काफिया शाह हुसैन पृष्ठ 72 43 राग राम कले हौ मत्ती देंदी हाँ बाल एआड़े नू दारू लाइया लगदा नाहे पुछ पुछ रहे सयाणे नू रहाओ सियाहे गई सपेदी आई रोनी हाँ वक्त विहाणे नू पंजा नदियां दे मोह आई केहा दोस मुहाणे नू कह हुसैन फकीर साई दा की करीबे रब दे भाणे नू एआणे अर्थात अनाड़ी सियाही अर्थात काले बाल सफेदी अर्थात सफेद बाल वक्त बिहाणे अर्थात बीता हुआ काल पंजा अर्थात नदियां पांच विकार मुहाणे अर्थात मल्ला। व्याख्या, मैं अपने छोटे से अनाड़ी बच्चे को बहुत समझाने का यत्न करती हूँ। यहाँ अनाड़ी बालक से अर्थ ना समझ मनुष्य से है, जिसे बार बार इस बात को समझना पड़ता है कि वह प्रभु की महत्ता को जाने। जिन्हें प्रभु के इश्क का रोग लग जाता है उन पर कोई भी दवा दारू काम नहीं करती। इसके लिए किसी सयाने से पूछताछ करनी पड़ती है। सयाने से भाव वह गुरु या मुर्शीद है या वह भक्त लोग है जिन्हें प्रभु की भक्ति प्राप्त हो चुकी होती है या वो उसके मार्ग पर काफी आगे बढ़ चुके होते हैं। ऐसे अनुभवी लोगों से प्रभु के साथ लगे इश्क तथा उसके वियोग को जानने से लाभ और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। रहाओ, प्रभु के भक्तों या साधु फकीरों जैसे सयानों से ही इस संबंधी जानकारी हासिल करनी चाहिए। उम्र बीतते हुए कुछ मालूम नहीं होता, मालूम ही नहीं होता कि कब जवानी बीत जाती है और बुढ़ापा आ जाता है। पता तभी चलता है जब काले बालों की जगह सफेदी लेने लगती है। उस समय वक्त के व्यर्थ बीत जाने का एहसास इतनी तीव्रता पृष्ठ 73 से होता है कि रोना आने लगता है अर्थात पछतावा होने लगता है। मनुष्य के स्वभाव में पांच विकारों जैसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। उनकी जकड़ तथा मद में डूबा व्यक्ति उस समय इनका प्रयोग खुलकर करता है और इन विकारों को पूर्ण मनमानी करने देता है, लेकिन अंत में वह इसका दोष अपने मन को देने लगता है जिसने इन विकारों के प्रभाव में ही आकर कार्यों को अंजाम दिया होता है। परंतु मन को दोष देने से क्या होगा, उसकी लगाम को कसना तो मनुष्य की चेतना का काम होता है। पहले मनुष्य स्वयं को मन के मनमाने प्रवाह से बह जाने देता है, फिर वक्त बीतने पर व्यर्थता का एहसास होने पर उसे दोषी मानने लगता है। मगर फकीर हुसैन का मानना है कि परमात्मा की यदि यही मर्जी है तो इसे मानना ही पड़ता है, अर्थात मनुष्य परमात्मा की मर्जी और संकेतों से बंधा होता है। 44 राग तुखारी हसण खेड़ू भाई असाणे दित्ता जी रब आपी असानो एक रोंदे रोंदे रोए गए एक हसी हसी ले गए गोए मैदानो एक रहाओ छोड़े तकबरी पकड़ी हलीमी की बटियों इस खुदी गुमानो। 2 कह हुसैन फकीर साईं दा सही सलामती चले जहानो। 3 भाई अर्थात किस्मत या भाग्य तकबरी अर्थात अहंकार हलीमी अर्थात नम्रता गुमानो अर्थात अहंकार या गर्व जहानो अर्थात संसार से। व्याख्या, शाह हुसैन के अनुसार परमात्मा ने स्वयं कई लोगों की किस्मत में हंसना खेलना लिख दिया जिस कारण उनका भाग्य चमकने लगा। यहाँ हंसने खेलने के से भाव साधारण अर्थ से नहीं है बल्कि उस आनंदमयी अवस्था से है जो प्रभु के ध्यान में जुड़ने से प्राप्त होती है। इस पंक्ति को इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि जिन भक्तों पर प्रभु अपनी कृपा दृष्टि डाल उन्हें अपने आंचल से जोड़ लेता है तो उस भक्तों की किस्मत में खुशहाली आ जाती है। इसी भाव को अगली पंक्ति में विस्तृत से जाना जा सकता है कि जो लोग प्रभु के मोहर बख्शीश से दूर होते हैं उन्हें हरदम रोना पड़ता है, जबकि दूसरी ओर कुछ लोग प्रभु के मार्ग पर चलते हुए हंसते हंसते सभी मुश्किलों को पार कर जाते हैं। परमात्मा की नजर जिन पर पड़ जाती है या वह जिनकी भक्ति से प्रसन्न होता है उनकी सारी मुश्किलों को आसान कर देता है। रहाओ, 1 परमात्मा की नजर भक्तों पर पड़े, इसके लिए जरूरी है कि वह अपने गुरूर पृष्ठ 74 और अहंकार को तत्काल छोड़ दे और नम्रता को अपना ले। वैसे भी थोथे अभिमान से मनुष्य को कुछ भी हासिल नहीं होता। 2 नम्रता धारण करने पर ही मनुष्य सही सलामत इस जहान से पार जा सकता है। फकीर हुसैन की यही शिक्षा है। 3:45 राग झिंझोटी। कदी समझ निदाना, घर किथे ई समझ निदाना, एक रहाओ। आपे कमीना तेरी अक्ल कमीनी, कौन कहे तू दाना, एक। इन्नी राही जांदे भिठड़े मीर मलक सुल्ताना, दो। आए मारे ते आप जिवाले अजराइल बहाना, 3। कहे हुसैन फकीर साईं दा बिन मसलीती उठ जाना, 4। निदाना अर्थात बेसमझ या मूर्ख, किथे अर्थात कहाँ, कमीना अर्थात नीच, दाना अर्थात सयाना, मीर अर्थात अमीर या बादशाह, मलक अर्थात जायजादों के मालिक, अजराइल अर्थात मौत का फरिश्ता, मसलीती अर्थात सलाह मशवरा। व्याख्या, ऐ मूर्ख बंदे, कभी तो समझदारी से काम ले, कभी तो समझने की कोशिश कर कि तेरा असली घर कहाँ है। असली घर से भाव परमात्मा की ज्योति में विलीन हो जाने से है। रहाओ, मनुष्य को यह बात समझ ही लेनी चाहिए कि उसकी अंतिम मंजिल मौत के बाद परमात्मा के द्वार पर पहुंचना है। 1. मनुष्य बहुत ही नीच किस्म का होता है, इसलिए उसकी अक्ल भी छोटी और शूद्र होती है। तेरी इन्हीं हरकतों के कारण ही कौन तुझे सयाना या अक्लमंद कहेगा। आखिर तूने ऐसे कौन से काम किए हैं जिसे कारण तुझे समझदार माना जाए। 1. दुनिया के सुख पदार्थों की दौड़ में दौड़ने वाले सभी अमीर बादशाह और सुल्तान भी मौत से बच नहीं पाते। 2. असल बात तो यह है कि मारने वाला और जीवन देने वाला सिर्फ प्रभु स्वयं है। अजराइल या यमदूत तो मौत लाने का सिर्फ बहाना बनता है। अजराइल के हाथ में कुछ भी नहीं होता। इन सब के पीछे का कर्ता स्वयं प्रभु ही होता है। 3. हुसैन का कहना है कि मौत के सिर पर आ जाने या मौत की नियत घड़ी आ जाने से कुछ भी चर्चा या सलाह मशवरा करने का वक्त नहीं रहता, और न ही उस सलाह का कोई अर्थ या प्रयोजन ही रह जाता है। अर्थात मौत की नियति को कभी भी टाला नहीं जा सकता। 45 राग रामकली। कदी समझ मिया मर जाना ही, कूड़ी सेज सवे दिन राती, कूड़ा तूल बिहाना री, एक रहाओ। हड्डा दा कलबूत बनाया, विच रखिया भौर रबाणा ही, 4 दिहाड़े गोयल वासा लच चलिया लबाणा ही, 2। कह हुसैन फकीर मौले दा साई दा राही निमाड़ा ही, 3। मियाँ अर्थात भले आदमी, तूल अर्थात लंबी उम्र, विहाना अर्थात बिताना, कलबूत अर्थात शरीर, भौर अर्थात रूह या आत्मा, लबाड़ा अर्थात व्यापारी, मौले अर्थात प्रभु। व्याख्या, ए मानुस, कभी तो इस बात को अच्छी तरह से जान ले, समझ ले कि तूने एक दिन मर ही जाना है। तू दिन रात झूठ की सेज पर सोता है, सारी उम्र तू इसी झूठी दुनिया में बिता देता है, और जानते हुए भी अनजान बना रहता है कि मौत अवश्यंभावी है। रहाओ, 1. प्रभु ने मनुष्य को एक शारीरिक ढांचा दिया और उसमें अपनी आत्मा को भर दिया। मनुष्य अपने जीवन के इन 4 दिनों को व्यर्थ ही गंवा देता है। आखिर में तो इस संसार से सौदागरों को वापस जाना ही पड़ता है। सौदागरों से भाव मनुष्यों से है, जिन्हें प्रभु अपनी आत्मा और अच्छे गुणों से भरकर इस संसार में कमाई करने के लिए भेजता है। कमाई से तात्पर्य प्रभु के नाम का जाप करना होता है। यदि मनुष्य इस काम को सही अंजाम देता है तो उसे मुनाफा प्राप्त होता है। मुनाफा हो या घाटा हो, इस संसार में से अंततः विदा लेना ही पड़ती है। 2. हुसैन फकीर यही मानता है कि परमात्मा की राह नम्रता से ही पार किया जा सकते हैं। 3:47 राग रामकली। कोई बात चलण दे तू कर वोए इतय रहना नाही, साढ़े रह हथ मिलक बंदे दी गोर निमाड़ी घर बोए रहाओ उच्चे मंदर सुनिहिरी छज्जे बिच रखाया दर बोए जिस माया दा माण करेंदा सो दूता दा घर बोए। लिख लिख पढ़ना मूल ना गुड़ना भैंस आई दा कर बोए जा आई आकिया प्रभु बुलाइया होए निमाड़ा तू चल बोए। पृष्ठ 76। आगे साहेब लेखा मांगे ता तू भी कुछ कर बोए कहे हुसैन फकीर रबाड़ा दुनिया छोड़ जरूरत जाना मरन तो अग्गे मर बोए। कोई अर्थात काई अर्थात कोई गोर अर्थात कब्र दूता अर्थात दुश्मनों भय अर्थात भय निमाड़ा अर्थात बेचारा लेखा अर्थात कर्मों का लेखा जोखा। व्याख्या ए मानुष कोई बात यहाँ से चलने के बारे में कर इस दुनिया में सदैव नहीं रहना सिर्फ 3.5 हाथ जगह मनुष्य को यहाँ रहने के लिए चाहिए वही उसकी असली संपत्ति और घर है जहाँ उसने मौत के बाद आराम करना और सोना होता है रहाओ अर्थात इस दुनिया में इतनी और जमीन जायदाद इकट्ठी करने की बात सोचना फिजूल ही है क्योंकि यहाँ से चले ही जाना है सिर्फ 3.5 गज वाले कब्र ही बंदे की मिल्कियत होती है ऊंचे मंदिर बना और उन पर सुनहरी छज्जे अर्थात सोने के पानी चढ़े छत्र चढ़ाकर मनुष्य इस बात का अभिमान करता है कि उसने धार्मिक स्थान के लिए बहुत कुछ किया है परंतु हुसैन फकीर के अनुसार इस सब से कुछ भी हासिल नहीं होता क्योंकि जिस धन दौलत और माया पर वह अहंकार करता है असल में वही उसकी दुश्मन होती है। इसी प्रकार मनुष्य जब यह सोचता है कि उसने कई धार्मिक ग्रंथ पढ़ लिए है उसे कई वेदों और धर्म संबंधी जानकारी और ज्ञान प्राप्त है परंतु सिर्फ पढ़ने और जानने से कोई ज्ञानी या महात्मा नहीं बन सकता असल बात तो उस ज्ञान को अमल में लाने की होती है ये उसे प्रीतम साई का भय मानना चाहिए। जब प्रभु का बुलावा आ जाए तो मनुष्य को चाहिए कि वह सिर झुकाकर नम्रता से चल दे प्रभु के पास जाने पर मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा मांगा जाएगा इसलिए जरूरी है कि उसे कुछ अच्छे काम कर लेने चाहिए ताकि उसे शर्मिंदा ना होना पड़े। फकीर का वचन है कि दुनिया छोड़कर जाने के लिए इस तैयार रहना चाहिए कि मौत से पहले भी मरना पड़े तो घबराहट ना हो अर्थात मौत को सदा याद रखने से मौत का डर कम हो जाता है और मनुष्य किसी भी उम्र या समय में मरने से घबराता नहीं।